पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मने प्रकट किया यहां पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तहलका मचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहां कोई दुख नहीं। वेद सत विद्या का वस्तु है। महर्षि दानंद स्वयं कहता है, देखिएगा, महर्षि दानंद कहता है कि वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दानंद, तो पुण्यात्माओं, जब वेद सत्य है तो महर्षि दानंद का सत्यार्थ प्रकाश जो उसका अनुभव वो क्या है, वो उसका सत्यानाश प्रकाश है, हो गया सिद्ध। वेदों में साकार सिद्ध कर दिया ढेर सारे प्रमाणों में कि वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है और वो घूमता फिरता है सब जगह, कवियों की तरह आचरण करता है, सबको ज्ञान देता है। वो फिर परमात्मा कौन हुआ? कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा। ये लीला की किसने आपके रूबरू कर दी कि कबीर भगवान ने उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो काशी में दुल्हा आए थे और आंखों देखा परमात्मा के महापुरुषों ने, उन्होंने बताया कि दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मग जो, वहां से चलकर आए हम कारणे। गरीबदास जी कहते अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। तो कबीर जो काशी में आए थे पूर्ण परमात्मा है और वेद उसकी महिमा गाते हैं। तीसिदम परमात्मा साकार है, नर आकार है और एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यजुर्वेद पांच के मंत्र नंबर 32 में ये देखिएगा, पंचमा अध्याय यजुर्वेद का पांचवा अध्याय, और यहां देखिएगा 32वा मंत्र है, 32वा मंत्र। इसमें क्या लिखा, उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को, कबीर अंगारियसी बंभारी अवेसुरसी दुवसान सुधन्नुसी। अब इसका अर्थ देखेंगे, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग माने पाप, अरी माने शत्रु यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहां इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत परिचय कर दिया, कांत परिचय यह लिखना था शत्रु वा के होता, वा शब्द भी लगाया करे, आप शत्रु हैं या वा माने या होता, या आप कांत परिचय हैं, ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारी असी बंभारी असी आप, और कबीर हो आप, कबीर देव हैं, यहां कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दानंद ने प्रथम मंत्र में एक यजु शब्द है। ऋतम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, इसका अर्थ यजु का यहां कर दिया, बिल्कुल सही ये लिख दिया, यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहां कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये, तो ठीक जहां पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो वहां कबीर कबीर शब्द है, कवि का दो अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, इस ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है, इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहां से छपा है, वहीं से, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, और ये कहां से छपा है, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, इतना इतना ये है। ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक सातवां मंत्र है, ये सातवां, इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव, ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा और गच्छात तुम विश्वेश्वाम जनिता, तो माने आप विश्व विश्वेश्वाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो, यथास देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों या सूर्य आदि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए, हे परमेश्वर तू सब सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि 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 यहां लिखना था आप कबीर देव हो, कबीर देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया, तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव, हम उसको कबीर देव, कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है, इसका ये अर्थ है, जो सबका रचनहार और सच्चा साथी सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, हम कबीर साहब कहे, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया, ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहां से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहां से फिर हम पांचवें अध्याय का, यजुर्वेद का पांचवें अध्याय का, अब हम 32वां मंत्र पढ़ रहे हैं, 32वां, इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है, बम भारी मान, ये क्या लिखते हैं, हे जगदीश जिस कारण आप कांति मान है, ठीक है, यहां अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन, और आप कबीर देव हैं, यहां लिखना चाहिए कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि वाह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले, एक अर्थ के एक ही शब्द के इसने दो अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले, असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता ये दानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वश कर रखे, एक मंत्र के दो तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी, और यहां बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारा तत्वों के विस्तार करने वाले, कोई अर्थ है, क्यों एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, दो दो करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, फिर इसका अर्थ क्या है, देखिए बम भारी बंधनों के शत्रु ये होना चाहिए था, आप बंदी छोड़े, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक, अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा वापस छोड़ा, कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा, उन्होंने बताया कि वहां सतलोक सौ प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे हैं, मुकुट धारण करके ऊपर छतर है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है सौ प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति रित धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए हम 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, रित धामा, रित माने सत्य यू लिखे रहा है, धाम माने लोक, सत धाम युक्त है वो, सत धाम वाला है असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पापनाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, और वो सौ प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहां रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में कि वो परमात्मा राजा के समान देखने में है, देखने योग्य है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के स्वरूप ही रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। वो वहां से वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरिद्यानंद के चेले ने कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। हरिदास ने, और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए इनको, कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए, तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है, उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते नौमन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुड़ जा दे उड़ जन दूजी बार, अब ईसा सुड़ जा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता अभी, अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले ना विरोधी सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, बतेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद, अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो नौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए, परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। तो महर्षि दानंद केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है, एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता बस। अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है, और सबके ज्ञान का कति खाल तार के दर दूंगा, जितने भी आचार्य ये शंकराचार्य महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी, जनता इनको धिक्कार रहेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई चार नहीं रहेगा, और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र, ये अपना दायित्व भूल चुके हैं, उन्होंने चाहिए ये सत्ज्ञान सब जगह पहुंचाने के लिए मदद करनी, इस दास के लिए कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए, तो तैसी कहां ये जनता के, इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए, जनता भाड़ में जाओ और एक है ये पुनकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं जिनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में, जो ये मदद कर रहे हैं इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा, और एक दिन ऐसा होगा या तो युग ज्ञान चलेगा न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। कोई सुना ही नहीं गा इनकी बकवादों को, गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी, इतने बोल दी उनको नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहां भी सुख है और वहां जाएंगे जहां सदा सुखी, जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और इस महर्षि दयानंद का एक और विधान दिखाता हूं, पहले तो ये और दिखाते हैं कि परमात्मा अन्य सदग्रंथों में भी, जैसे पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। बताओ हे भगवान, किसान देरा कर रखे वक्ताओं ने सदग्रंथों को ठीक से समझानी, आओ दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आप किसी पवित्र ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति विशेष से या इनके फादरों तक, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा की क्या स्थिति है, वो निराकार है कि साकार, ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। तो बात हुई, परमात्मा निराकार है। देखिएगा पवित्र बाइबल को ये सर्वधारीय मानते हैं कि इसमें जो लिखा वो सत्य है, उसके आधार से ज्ञान प्रचार करते हैं ईसाई धर्म के प्रवक्ता। ये पवित्र बाइबल क्या बता रहा है, इन सब का मोतिया बंद हो रहा था। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन चमीन के फिरा मोतिया बंदरे। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में मोतिया बंद हो जा, आंखें ऐसी दिखेंगी जैसे स्वस्थ हैं, लेकिन उसने दिखता कुछ नहीं, नपटन दाए वो। तो ये नपटन देते दिखे थे विद्वान, चार श्लोक घोट दिए गच्छामी करके हमने मूर्ख बना गए। अब देखो ये पवित्र बाइबल दिखाते हैं आपको, इसके उत्पत्ति ग्रंथ को लेते हैं, ये यहां से छपा है, ये संपूर्ण जीवन जन बाइबल, ये सारा इसका यहां हिंदी में लिख रखे हैं सारे। प्रबंध संपादक है डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम एमए, ये यहां से छपे। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ दिखाते हैं आपको, ये यहां से आरंभ होता है जेनेसिस, जेनेसिस माने उत्पत्ति, एक अध्याय चार पृष्ठ पे कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, परमेश्वर ने उजियाले को दिन अंधियारे को रात कहा, सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन, सांझ हुई भोर हुआ फिर दूसरा दिन, उस दिन कुछ और रचना की, फिर सांझ हुई भोर हुआ फिर तीसरा दिन हो गया, हम छठे दिन पर आवांगे। पांच नंबर पृष्ठ पर इस एक नंबर अध्याय का श्लोक नंबर हम 26 पढ़ेंगे। सारा कुछ उत्पत्ति करके फिर कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने जैसा बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कहने का भाव ये है कि वो उन तक बुद्धिमान हो, उनको कंट्रोल में रखे। मनुष्य को हम अपने जैसा बनाएंगे, भगवान ने कहा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। चार में लिख रखा चार पंक्तियां कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। परमात्मा कैसा हुआ? नराकार मनुष्य दृश्य, ये देखिएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, ठीक। और वो सातवें दिन उसने विश्राम किया। अब देखो सातवां दिन, यों आकाश में पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया, ठीक। अपने काम से वो सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया, ठीक। इब आगे दिखाते हैं, दस पृष्ठ पर आ गई बा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। जितने मनुष्य जीवित उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उन्हें पहना दिए। बताओ फिर निराकार क्यों करोया? बाटिका में घूमे, कपड़े बनवा के लाए, उनकी पराए, फिर भी गोदी फॉर्मलेस। एक लोकवेद बना रखा था, सुना सुना रट्टे लगा रखे थे सबने, सदग्रंथ नहीं समझे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, ओहो, उस परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसे सिद्ध हो गया यू भगवान का है इनका कि। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसे सिद्ध हो गया कि ये भगवान एक से अधिक भी हैं। ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही अन्य रूप में इनको भी, क्योंकि पूरे तीन लोक को वही कंट्रोल कर रहे हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को। अब देखिएगा पृष्ठ 24 पर, पृष्ठ 24 पर वही उत्पत्ति 17-18, जिनसे 17-18, इसमें 18 अध्याय में अब्राहम ममरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने, यानी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, देखा तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उन्हें उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का लाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। उन्होंने कहा, उन तीनों ने कहा, तू जैसा कहता वैसा ही कर। अंडरस्टूड हो गए? ये तीन है और परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को रचा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, पूरा विश्व भूला पड़ा इस अर्थ ज्ञान को। तो इस दास पर रजा बख्शी है पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। इसको ग्रहण करो, विचार करो, दास क्यों प्रयत्न कर रहा, क्या स्वार्थ है मेरा। अब आपके समक्ष दो पवित्र धर्मों के ग्रंथों से सिद्ध हो गया, पवित्र वेदों से, पवित्र बाइबल से, कि परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ये भी वेदों में सिद्ध हुआ, कुरान शरीफ भी उसका कबीर नाम को सिद्ध करेगी। और भगवान मूल रूप से तो एक परमात्मा है, उसके अन्य विभाजन किए हुए हैं, वो एक से अनेक भी स्वामी हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक विभागीय मंत्री हैं तीन लोक के, वो आपके सामने पवित्र बाइबल में भी स्पष्ट हुआ और पवित्र वेदों से भी दास ने स्पष्ट किया। अब पवित्र कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करते हैं कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो साकार है। और वो कबीर है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है वो परमात्मा। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पवित्र मुसलमान धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो अल्लाह है हमारा। और वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि वो तो कबीर नामक अल्लाह कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और वो सर्वशक्तिमान है, सब पाप नाशक है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार गीता ज्ञान दाता 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहे हजरत मोहम्मद जी को। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके अंदर लिखा है कि जो इस पुस्तक में लिखा है उसमें कोई संदेह मत करना, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहां से छपी है? ये वही लिखा कि वो इलामी किताब है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहां से छपी है और ये कॉपीराइट सारा कुछ लिखा है इन्होंने। अब इसके ये देखिएगा, ये है सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25, ये 604 पृष्ठ पे। ये है अरबी भाषा है, लिपि बद उर्दू में है और ये सारा कुछ। और ये भाषा अरबी, ये देवनागरी लिपि में है। यहां देखिएगा ये 52वीं आयत है, यहां से देखेंगे 51 यहां समाप्त हुई। यहां लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन, जैसे संस्कृत में हलंत वाला मैं लगाते हैं, जैसे कबीरम लिख दें कबीरम तो मैं हटा दिया जाता, जब हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखेंगे। तो ये कबीर शब्द है, सीधा कबीर, ये कबीरन जिहादन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है हिंदी में। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं शुरू होती है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ, कबीरन का अर्थ यहां बड़ा कर दिया, बड़ा। अपना तुम इसका वास्तविक अर्थ ये दास बताओगा, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता है। अब ये हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में मत आना, क्योंकि जो काफिर है वो इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। और तुम मेरे द्वारा बताई गई इस कुरान शरीफ की दलीलों पर दृढ़ हो जाना, विश्वास करना, और वो कबीर परमात्मा है, अन्य मानते नहीं है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लड़ाई करना नहीं, संघर्ष करना है। वो कहे कबीर भगवान नहीं है तो मानना नहीं उसकी, वस्ते तो कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़े। और ये दृढ़ भक्त होते हैं, हजरत मोहम्मद जी ने किसी की बातों को नहीं माना, उसके बाद बहुत सी यातनाएं भी उन्हें दी गई। अब देखो 53 पे है, हम यहां पढ़ेंगे हिंदी हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, 52वां पूरी हुई या 53 है, और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। 55 में, 54 होली 55, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। एक तो इससे यह सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा जिसके विषय में हजरत मोहम्मद को सलाह दे रहा है, और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म के लिए पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हां जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा यानी चैतन्य कर दिया जिंदा करते पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, पाकी मानो उसकी महिमा पवित्रता, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। इन्होंने यहां काफी अर्थ कर दिया किसका, अब देखो 58 आयत यहां आ जाते हैं। ये खबीरा शब्द है, इवादई खबीरा, इवादई माने पूजा के योग्य है वो कबीरा। अब यहां भी 59 में भी खबीरन कर दिया, इस कबीर कहो खबीरन कहो से खबीरा कहो से कबीर कहो, ये एक ही परमात्मा का नाम है। जैसे हमारे यहां हरियाणा में एक पलवल शहर है, वहां के क्षेत्र के व्यक्ति उसको परवर बोलते हैं, वो लय को रे बोलते हैं, पलवल को परवर कहते हैं, और जैसे दलिया को हम दलिया कहें ना, दलिया, दलिया को वो दरिया कहते हैं। तो बात वही है, तो कबीरन कहो खबीरन कहो खबीरा कहो, इन्होंने उसका अर्थ कर दिया बड़ा काफी बहुत। देखें यहां गड़बड़ होगी सारी। अब यहां आते हैं हम, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो वो कभी मरने वाला नहीं है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हम मोहम्मद को मिले थे, मोहम्मद जी को, और हम मोहम्मद को वहां ले गए, जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सभी महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, ऐसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो ये समझ नहीं सके अनुवाद करता है, जिंदा का अर्थ कर दिया चैतन्य, उसका अर्थ है कि जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था वो परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, जिसने 6 दिन में सृष्टि रीति सत्म दिन तख्त पर विराजा, वो अविनाशी है, वो किसी का मारा नहीं मरता, और सब गुनाहों यानी पापों का नाशक है, और वो यानी सातवें दिन तख्त पर विराजा, वो परमात्मा है, वो कबीर। ये देखो, ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का बयान करो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा बता रहा है, और उसी की महिमा हजरत मोहम्मद से भी कह रहा, तू उसी के गुण गा, ये देखो, और उसके बारे में वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इन्हें कबीर का अर्थ काफी कर दिया, यहां वो कबीर खूब खबरदार है, ये लिखना कबीर अल्लाह। अब 59 में कहा कि जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में उत्पन्न किया, पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा की खबर नहीं रखता, वो भी तत्वदर्शी संत की तरफ ही संकेत करा। ऐसे ही ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ही आकर सुनाता है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत वो बाखबर तुझे उस तत्व ज्ञान को बताएंगे, उस परमात्मा की खबर बताएंगे। यही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही ब्रह्म है। और हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। उस कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उसके बारे में अल्पज्ञ है, नहीं जानता। ये दास है वो बाखबर, जब समझ में आ जाए कल्याण करवा लो। अब देखिएगा 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर लिखना था। यहां देखो 59 ये लिखा है, अरहमान फसल भी ही खबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। ये देखो तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह वो कबीर अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है, ये लिख देते ये चल ना दिक्कत मानने थे, वो कबीर अल्लाह रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी इलम वाले से पूछ। देखो 59 में स्पष्ट कर दिया, अपने आत्माओं 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया रल मिलकर के परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो ऊपर एक स्थान पर रहता वहीं से आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वो कौन है? वो दास बताएगा, जो काशी में आया था जिसको दुल्हा धन कहते हैं, वो परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का दर्शन हुए उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण सुनाएंगे, हमने एक पुस्तक से पढ़े हैं, उसमें नोट कर रखे हैं और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा, उन पृष्ठों पर एज इट इज लिखा मिला जो दास आपको सुनाने जा रहा है। जैसा कि आप जी ने वेदों में भी देखा, उसमें स्पष्ट किया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उन लोकों से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेकड़ा जिला मेठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, क्या बताया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय रामानंद जी को मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वयं परमेश्वर ने आकर उनको बताया था कि हम ही अल कला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक दनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा हम सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं, अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी, जो परमात्मा को देखा सतलोक में फिर यहां भी बैठे देखा, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास स्वरूप में तू ही बोलनहार, दोहू ठोड़ है एक तू, वहां भी तू ही है और यहां भी आप ही हो, दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, कह रामानंद हम कारण है तुम आए हो मग जो, यानी वहां से चलकर आए हो। आदरणीय दादू साहिब जी कहते हैं, जिन मुझको नित नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कर सीमाए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक देव साहिब जी की वाणी में आपको प्रश्न नंबर तक बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, महला पहला श्री राग, इसमें लिखा कि एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भौकाई, सदा बियाल कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंद न करने की कार, उबिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फिर कहा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करतार। जब नानक साहिब जी को बेई नदी से एक जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए और उनको दरिया में डबोने का बहाना करके वहां से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं अन्य स्थान पर छोड़ दिया अपस्ट्रीम में, वहां उपस्थित व्यक्तियों ने सोचा नानक साहब जी नहाने के लिए छलांग लगाई थी डूब गए, वो ढूंढ रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और शरीर रख दिया अपस्ट्रीम में, उधर ध्यान नहीं जा सकता किसी का। तो नानक साहब जी को सचखंड लेकर गए परमात्मा, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तब जाके काशी में देखा कि परमात्मा ने कहा मैं बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, धानक जुलाहे का काम करता हूं। अपनी आत्माओं नानक साहब जी ने ऊपर देखी जो सूरत, नीचे आके जब काशी में कपड़ा बुनता देखा नू कानू, तब कहा था फाई सूरत मुलुक की वेश, ओहो जिस देश में जाता वैसी वेशभूषा बना लेता, ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, कि ये ठग है, खुशी में कह रहे ये ठगवाड़ा ठगी देश, छुपाए बैठे अपने आप को, ये धानक रूप रहा करतार। फिर 731 पृष्ठ पे कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा है, कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा, क्यों कर मुंडा पावे। वो अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, एक सेकंड में ऊपर पावे एक सेकंड में नीचे, बताओ मेरी इससे मेल हो गया, मैं इसका कैसे अंत पा सकता हूं। फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, तू बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई इजराइल गिरफत दिल ईज हेत निदानी। ये भी महला पहला है, राग तिलंग है। जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस, दस्तमगीर आखिर व्याप्तम नदारद चू शब्द तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बाजी ख्याल, गहे न नेकी कार करदम मम ईचीनी अहवाल, बद बखत हमचू बखील गाफिल बे नजर बेबाक, नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हो कून करतार का अर्थ है शब्द से सारी सृष्टि के रचने वाला, कून माने शब्द, और कौन है हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु मेहरबान, और बेऐब परवरदिगार निर्विकार भगवान, निराकार नहीं निर्विकार, बेऐब परवरदिगार। और फिर बताया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 1257 पर क्या लिखा है, महला पहला, महला पहला की वाणी नानक साहिब जी की वाणी है, कहते हैं बागे कापड़े और बोले बैण, लंबा नक काले तेरे नैण, कबू साहेब देखा बैण, नानक साहब जी कहते हैं कि उसके सफेद कपड़े और लंबा नाक, काले काली आंख, और कहता है अन्य से पूछ रहे हैं कभी भगवान देखा तुमने? देखा हो तो किसी को बतावे, सब निराकार कह रहे हैं। उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहेब समर्थ तेरे ताण, जलथल डोंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब वीर। यहां साहेब कबीर होना चाहिए था गलती से, क्योंकि इस तीन पंक्तियों में दो बार वीर लिखा एंड में। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, एक महापुरुष की वाणी है, इसमें दो बार वीर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से, ये कबीर है। जिंतन साज दिए नाल खंब, अति तृष्णा उड़ने की ढंज, नदर करे ता बंद धीर, जिवें विखाले तुम वेखा वीर। इसमें स्पष्ट क्या कर दिया, इसमें 1257 पृष्ठ पर नानक साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सफेद कपड़े बागे कपड़े बोले बैण और लंबा नख काले तेरे नैण, तो भगवान निराकार हो। फिर उसी में लिखा है 1257 पृष्ठ पर कि निरंकार आकार है आपे आप ब्रह्म बुलाए, जिसने तुम निरंकार को हो वो साकार है, ये तुम अपने आप भूल बुलाए बैठे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे नानक साहिब जी क्या कहते हैं, बड़ा साहिब है आप अलख अपार, तेरे बंक के लोयन दंत रिसाल, दांत भी है भगवान तेरे प्यारे प्यारे और आपकी आंख भी सुंदर है, सोहना है नक जिन लंबड़े बाला, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला और सोने नक सुंदर नाक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया कहते सोने की ढाला, तेरा सोने जैसा सुंदर शरीर सोने की तरह, कंचन काया यानी स्वर्ण जैसा शरीर तेरा। फिर लिखा के बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी, हे परमात्मा तेरी चाल भी सुंदर तेरी आवाज भी प्यारी प्यारी। और फिर कहते हैं सारंग जीव पग धरे ठम ठम, कहते हैं सारंग की तरह इतना प्यार ते ठमक ठमक का चाल है, और आप संधुरे सिरंग राती फेरे माती, उदक गंगा वाणी बिनवत नानक दास हरी का, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। इसमें साफ कर दिया, नाक भी तेरे सुंदर, कान भी काले, बाल भी सुंदर तेरे, सोने के सी काया तेरी, बंके लोन दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी, तेरी चाल भी आनंददायक सुंदर और मीठी वाणी, और सारंग जीव यानी सारंग पक्षी चाल लाकर सारस की तरह कहते हैं, पग धर ठम ठम और आप संदूरिये, बताओ और के कसर देगा भगवान। फिर भी किसी ने पूछ रहे को भगवान निराकार है, और ये महापुरुष क्या बता रहे हैं। यहां परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसुम अवगत सत कबीर, ऊपर रहता हूं मैं सतकबीर हूं, वो सतपुरुष हूं, सचखंड में रहता हूं, और इन सब सदग्रंथों ने रल मिलकर प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, ऊपर के लोक में रहता है, और यहां भी वो कुछ लीला करने के लिए, कुछ समय अपना उपदेश करने के लिए आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कौन है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक तीन भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार, वो कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है, इति सिद्धम सत साहिब।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार सर साहब।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा भक्त शिशुपाल दास है।
सर कहाँ से आए आप?
मैं मरुखपुरा पोस्ट मसूरी जिला भिंड मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ।
सर क्या काम करते हैं आप?
मैं वैसे चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद और होम्योपैथी से मैं चिकित्सा करता हूँ।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
मैं दुर्गा जी के और हनुमान जी का विशेष भक्त था मैं पुष्टांत तक में।
तो जो आप दुर्गा जी की भक्ति करते थे या हनुमान जी की भक्ति करते थे उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था?
नहीं वैसे विशेष लाभ मुझे कभी नहीं हुआ।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आप कैसे आए?
मेरे पैर में गैंग्रीन हो गया था 25 अप्रैल 2009 को। मैं भिंड पहुंचा था, उस टाइम चुनाव का माहौल था, मुझे एक बंदा लेके गया था भिंड हॉस्पिटल में लेके गया था, वहां जाके उन्होंने भर्ती करवाया था। डॉक्टर ने देखते से बोले ये तो पैर में गैंग्रीन है, बोले पैर काटना पड़ेगा मुझे तुमने, अब जो भी हो तो घर पे से मैं अकेला आया तो वो वापस चले गया था। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा, सुबह से शाम तक मैंने करीबन बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, सभी का एक ही इलाज था, सभी ने एक ही बात कही थी मुझे कि आपका पैर काटना पड़ेगा, गैंग्रीन है, इसके पैर काटने के अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। बाद में मेरा चिकित्सा पिताजी भी आ गए थे घर से, मुझे पढ़ने लिखने का काफी शौक था, वहीं पर एक अपना भगत था, उन्होंने बाद में लाके मुझे एक पुस्तक दी थी भक्ति सौदागर को संदेश। जब उसको मैंने पढ़ा और उसको समझा मैंने, तो मैं जब इन लोगों को इसमें जिनको फायदा हुआ है उन्होंने ये कहा मैंने कि जब इनको फायदा हो सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं हो सकता, हमने कि मेरा पैर क्यों नहीं बच सकता, मैंने अब पैर कटे या जाए मैं जाऊंगा जरूर। तो जो भगत ने मुझे पुस्तक दी थी उसने मुझे कहा कि अर्जी लगा दो, मैंने अर्जी भी लगाना मैं नहीं जानता, अर्जी भाई तुम लगाओ मैं चलूंगा निश्चित, ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा थी मेरी। तो बाद में जब मेरा पैर कटने की नौबत आ गई बिल्कुल, उन्होंने डेट फिक्स कर दी मेरी, उसके जस्ट दो दिन पहले उन्होंने जैसे शनिवार को मुझे डेट फिक्स करी थी सोमवार का पैर काटने के लिए, मैंने अब जो कुछ भी है तो डर के मारे मेरे तो वैसे ही हालत मेरी खराब हो गई थी, पैर में सूजन थी काफी इतनी थी मेरे को, जांघ पे से पैर कटना था मेरा, डॉक्टर भी बोले। पर अचानक सोमवार को एकदम आश्चर्य सा हुआ, पुस्तक तो मैंने पढ़ी थी गुरु जी के अपने, तो बस एक ही नाम रटा करता था मैं, हे कबीर कबीर महाराज, हे रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा करो, बस इतनी मैंने डोर लगा के रखी थी। उसके बाद में मुझे जो भी फायदा हुआ सोमवार को मेरा पैर बिल्कुल सूख के एकदम कांटा हो गया, मैंने ये सोचा कि आज मेरा पैर जाएगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ क्योंकि गैंग्रीन से कोई भी बचा नहीं है उस वक्त। पर धीरे धीरे ये हुआ, जब डॉक्टर को मैंने बताया तो बोले तेरा ऑपरेशन तो बोले मैं करूंगा पर देखता हूँ, बोले जब उन्होंने मुझे ऑपरेशन किया मेरा तो सिर्फ बिना शून्य और बिना उसके पूरा पैर मेरा बेकार, मतलब वो हो ही चुका था, बेकार हो चुका था, मांस पूरा निकाल दिया, सुनने की एक सुई भी नहीं लगाई, दर्द की भी नहीं, मैं चीखते चिल्ला तेरा ऑपरेशन थिएटर में मैं। तो बाद में मैंने बोला थोड़ी सी उन्होंने ब्लेड बदलने के लिए थोड़ा सा मेरे समय दिया, तो उस टाइम उन्होंने जैसे ही ब्लेड बदलने का समय दिया मेरे को सांस आई, मैंने डॉक्टर साहब एक निवेदन है मेरा, मैंने बोलो क्या बात है, तो उन्होंने ये कहा कि कम से कम मुझे दर्द की या सुनने की सुई तो लगा दो, तो उन्होंने मेरे को एकदम डांट दिया, बोले चुप रहे ये काम तेरा सोचना नहीं मेरा है, क्योंकि चिकित्सक मैं भी था, आयुर्वेद से मैंने डिग्री हासिल की हुई है। पर उसके बाद में जो मुझे फायदा हुआ तो डॉक्टर ने ये कहा था आखिर में कि तेरा पैर कैसे बचा, 35 साल की लाइफ में ये पहला केसेस है गैंग्रीन वाला जिसका पैर बचा है, नहीं आज तक किसी का पैर बचा नहीं है, किसी का दो जगह से किसी का तीन जगह से कटने के बाद में कोई कोई आदमी तो चले ही गए बिल्कुल, कम से कम उसने खुद ने स्वयं ने ये बात स्वीकार की डॉक्टर ने, वो भी ईमानदार डॉक्टर था, कि कम से कम बोले 10,000 आदमियों में से कोई एक बंदा बचता है इस बीमारी से, वो भी पैर काट दिया जाए तो, अन्यथा उसके भी चांसेस है ही नहीं। इस प्रकार मुझे यहाँ आने से पहले मालिक ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे पहले ही फायदा दिया। पाप पिताजी भी मेरे पुस्तक पढ़ते थे, उनको भी मैंने पूछा, उस टाइम मैं करीबन 10 मीटर भी नहीं चल पाता था बिल्कुल, एक टांग से भी लाठी के सहारे चलता था, 2-3 मीटर चला बैठ जाता था, 2-3 मीटर चला फिर बैठ जाता था, पिताजी को भेजा था 2009 में मैंने, तो वो नाम लेके गए तो उनको पिताजी ने मालिक से अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने बोला कि नामदान दिलवा दें, नामदान के लिए मैं तो खुद तैयार भी बैठा था, लेटिंग वेटिंग क्योंकि इंटीरियर में रहता हूँ, गांव में रहता था मैं, तो खुले में जाना पड़ता था, घर के पीछे ही थोड़ी सी जगह पे बैठ जाता था, शर्म आती थी मुझे क्यों, बहन बेटी सभी देखती थी मुझे कि इतना बड़ा बोलो मैं बैठा हूँ वहाँ पे लेटिंग कर रहा हूँ मैं। एक दिन मैं ऐसी कमरे में गया था, गुरु जी की मैंने तस्वीर देखी और उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद में मैंने जैसे ही उनसे अर्जी लगाई, हे मालिक कम से कम इतना कर दो, भले मैं लाठी के सहारे से थोड़ा बहुत चल लूं, मैं खेत दो खेत तो चल लूं, तो मैं आपके पास मैं आ सकूं। मैं जैसे मैं वहां पे पहुंचा तो दूसरे दिन रात को मैं जो दिन में 3 या 4 गोलियां खाता था, मैंने रात को 1 गोली भी नहीं खाई। फिर मैंने क्योंकि दर्द नहीं हुआ पैर में, मैंने गोलियां नहीं खाई। जब गोलियां नहीं खाई मैंने सुबह पापा को बोला, मैंने पापा बोले मैंने गोलियां नहीं खाई, मेरे को दर्द नहीं हुआ, तो बोले अच्छी बात है। बोले फिर मैंने गोली खाई ही नहीं, सिर्फ जिस दिन ड्रेसिंग होती थी उस दिन मैं पूरा मांस निकाल चुके थे डॉक्टर मेरा पैर का, तो घर पे ही ड्रेसिंग कर लिया करता था, इतनी हालत भी नहीं थी क्योंकि बीमारियों ने पूरे घर पे हमको जकड़ कर रखा था, सभी को, माता को, पिताजी को, मुझे भी, तो हालत इतनी खराब हुई थी। जब मैं थोड़ा बहुत चलने लगा उसके बाद में मैं यहाँ पर 11 जुलाई 2009 को मैं यहाँ पहली बार आया था, नामदान लिया।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
उसके बाद में पहली बात तो ये हुआ कि उसके बाद में मुझे फिर पुनः कुछ शायद मेरी गलती हो गई थी क्या, तो थोड़ा सा मुझे पैर में कीड़े पड़ गए थे मेरे, ये 2009 में दीपावली की बात है, अमावस की बात है, उस दिन मैंने ड्रेसिंग के लिए जैसे पट्टी खोली वैसे कीड़े झड़ने लगे, जैसे पैर हिलाऊं जैसे नीचे टप टप करके गिरे, तो मैंने अब तो जाना ही, अब तो बचना है, कोई चांसेस है ही नहीं। पर मैंने आश्रम के लिए फोन किया तो आश्रम से मुझे वापस फोन गया, तो उन्होंने बोला आप ज्योति लेके आ जाना, बोले यहाँ पे, मैंने पर मैं अभी चलने फिरने के लायक नहीं हूँ, तो बोले आप जब भी आओ जब लेके आ जाना, तो मैंने ठीक अच्छी बात है, पिताजी के हाथ से मैंने ज्योति पहुँचा दी। बाद में मेरा ऑपरेशन ग्राफ्टिंग होना थी, ग्राफ्टिंग के समय भी ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती था, वहाँ पे भी 1 महीना रहा, पर धीरे धीरे सब फायदा होता है। ग्राफ्टिंग के लिए मेरे शरीर में ब्लड नहीं था, बोले ब्लड को बढ़ाओ, मैंने अपने आप डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं और नहीं बढ़ रहा तो उसका मैं कोई इलाज कर नहीं सकता, मेरे पास में और एक्स्ट्रा किसी ब्लड लेने की वो नहीं है, तादाद नहीं है, तो उन्होंने उसी टाइम मेरा ऑपरेशन चालू कर दिया। ओटी में जब मैं पहुंचा था ग्राफ्टिंग चल रही थी, धड़ मेरा कमर से नीचे सुन्न था, तो एकदम मुझे उंगलियों पर मैं अपना गुरुजी का नाम ले रहा था, अपना मंत्र जाप कर रहा था मैं, तो डॉक्टर ने बोला कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं, मैंने गुरुजी का नाम ले रहा हूँ, बोले मैं ऐसे करते करते एकदम मुझे कुछ देर बाद बातों में उनके मेरा ध्यान बटा, मेरे को घबराहट सी हुई, तो उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया मुझे, ऑक्सीजन कब निकाला उन्होंने क्या किया मुझे फिर पता नहीं है, पर बाद में उन्होंने एक शब्द मेरे कानों में गूंजा था, देखो मूवमेंट कर रहा है, बोले ये, तो फिर बाद में मेरे को करीबन 1 हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने एक बात बताओ सर, उन्होंने कि कम से कम ये तो बता दो मुझे कि उस टाइम ऑपरेशन ओटी के अंदर मेरे साथ में क्या हुआ था, बोले कब, मैंने जिस दिन ऑपरेशन था मेरे ग्राफ्टिंग हुई थी पैर पे, मतलब जांघ पे से खाल निकाल के पैर पे चढ़ाई थी उस टाइम, बोले कुछ तो भी नहीं, मैंने कुछ तो हुआ था, आपने एक शब्द बोला था, मैंने मूवमेंट कर रहा, मेरे गैर होश हुआ नहीं था, मैं बेहोश हुआ नहीं था मैं, पर मेरे शब्द में बीच में कहां गई, ऑक्सीजन आपने कब निकाली मेरे शरीर से, मुंह पे से कब हटाई थी मुझे जानकारी नहीं, तो बोले तू बोले 5 या 7 मिनट के लिए बोले चले गया था, बोले शरीर में जान नहीं रही थी, जो हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं वो भी इंजेक्शन लग चुका था, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। इस प्रकार परमात्मा ने मुझे डबल से जीवन दान दिया था मुझे वापस। उसके बाद में फिर भक्ति करते रहा मैं आराम से। अभी 2 साल पहले मुझे लीवर और तिल्ली में हजन चक्कर बहुत ज्यादा सूजन आ गई, डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन का बोला मुझे कि ऑपरेशन करवा लो आप, बोले ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो बोले मर जाओगे, तो मैंने आप जिंदा रखने की मुझे गारंटी देते हो क्या, बोले ऐसा भी कोई होता है क्या, नहीं होता, मैंने छुट्टी करो मेरी, तो बोले ये दवाइयां लेते रहे ना, तो मैंने दवाइयां वगैरह कुछ नहीं लिया, सीधा वहीं हॉस्पिटल से सीधा अपने आश्रम पे आया, गुरु जी से अर्जी लगाई मैंने, गुरु जी को बोला, गुरु जी बोला कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, यहां से वापस गया बिल्कुल मैं ठीक हो चुका था मैं। इस प्रकार तो मुझे फायदा स्वयं को हुआ, इसको भी मेरे फिर बाद में करीबन पैर में दर्द होता था, मैं घर में अकेले जुड़ा था और पापा जुड़े थे और कोई नहीं आ रहा था मेरे यहाँ से, मैसेज भी मतलब घर में सब पूजा पाठ वगैरह सब मैंने बंद कर रखी थी सभी कुछ, पर मैसेज आ नहीं रही थी। उनके पैर में दर्द चालू हुआ, चूंकि चिकित्सक मैं भी हूँ, मैंने भी दवाइयां दी, दूसरी जगह भी 2-3 जगह से दवाइयां लगी थी, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने एक काम करो, मैंने चलो बोले गुरु जी मालिक के पास में चलो, महाराज जी के पास में, संत रामपाल जी महाराज के पास में चलो, फायदा हो जाएगा, तो बोले मरती क्या नहीं करती, वही किस्सा उसके साथ में हुआ, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोले फायदा तो नहीं हुआ, मैंने धीरज रखो थोड़ा थोड़ा मैंने आराम मिलेगा, तो उनको फिर मैंने अमृत जल थोड़ा सा पिलाया और रात भर में उनको आराम मिल गया, जहां लाठी के सहारे से वो चल रही थी बिल्कुल बेधड़क चलने लगी, आराम मिल गया। फिर उसके बाद में मिसेज को भी फायदा हुआ, बच्चे को भी फायदा हुआ, आज कुल मिला के हम सभी लोग सुखी है।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप जो बता रहे हैं कि भाई जैसे आपका पैर कटने वाला था वो ठीक हो गया, फिर आपको और भी बहुत से रोग थे, आप एक चिकित्सक होते हुए भी अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे, फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, उनसे अरदास लगाई, तो मात्र आशीर्वाद से आपके वो रोग ठीक हो गए। आपकी पत्नी को भी बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई। तो सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं भगत समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ, आज ये संत रामपाल जी महाराज इनको एक संत न समझते हुए पूर्ण परमात्मा समझिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, शाप लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा इंसान के पाप से पाप कर्म को भी काट कर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। मैं सभी को ये बोलता हूँ, वो लोग यहाँ पे बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आए और अपना आत्मकल्याण करवाएं।
जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।